ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मा मनभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद्भागवतम के श्लोक की आवृत्ति करेंगे, छठे स्कंध के 12वें अध्याय का 7 नंबर का श्लोक, वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युयुत्सताम् कुत्रचित् आततायिनां जयः सदा एकत्र न वै परात्मनां विना एकं उत्पत्ति ल स्थिति ईश्वरं सर्वज्ञं आद्यं पुरुषं सनातनं। ययोत्सतां कोत्रचिदाततायिनां ययोत्सतां कोत्रचिदाततायिनां जय सदैकत्र नवये परात्मनाम विनयकमुत्पत्तिलय स्थितेश्वरम् सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम् युयुत्सता जो युद्ध के लिए उत्सुक हैं कुत्रचित कभी कभी आततायिना आयुधों से ले लैस जय विजय सदा सदैव एकत्र एक स्थान में न नहीं वै निसंदेह परात्मना अधीन जीवात्माओं का जो परमात्मा के निर्देश में कार्य करती हैं बिना के अतिरिक्त एकम एक उत्पत्ति सृष्टि लय संघार स्थिति तथा पालन का ईश्वरम नियंता सर्वज्ञम जो सब कुछ भूत वर्तमान भविष्य जानता है आद्यम आदि पुरुषम भोक्ता सनातनम नित्य। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, वृत्रासुर ने आगे कहा, हे इंद्र, आदि भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी की सदैव विजय होना निश्चित नहीं है। वे ही उत्पत्ति पालन और प्रलय के कारण हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होने तथा भौतिक देहों को धारण करने के लिए बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधीनस्थ कभी विजयी होते हैं तो कभी पराजित होते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबों के हृदय में स्थित हूं और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो लड़ाई वास्तव में परमात्मा स्वरूप श्री भगवान के निर्देशन में होती है। भगवान ने गीता 3:27 में अन्यत्र कहा है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु भौतिक शरीर के तीनों गुणों से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। जीवात्माएं परमेश्वर के निर्देशानुसार ही कार्य करती हैं। भगवान भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं और वह जीवात्माओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करती है। जीवात्माएं स्वतंत्र नहीं होती, यद्यपि मूर्खतावश वे अपने को ही कर्ता समझ बैठती हैं। विजय तो सदैव श्री भगवान के पक्ष की होती है, अधीनस्थ जीवात्माएं तो श्री भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत लड़ती हैं। विजय या पराजय वस्तुतः उनकी नहीं होती, यह तो भौतिक प्रकृति के माध्यम से भगवान की व्यवस्था के द्वारा होती है। विजय पर गर्व या हार पर शोक करना व्यर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहे और जो समस्त जीवात्माओं के विजय तथा पराजय के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान का उपदेश है, नित्यम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, तुम अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि निष्कर्म से कर्म, निष्कर्म से कर्म श्रेष्ठ है। जीवात्मा को अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करने का आदेश मिलता है। जय या पराजय तो परमेश्वर पर निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें निर्दिष्ट कर्म का अधिकार है किंतु तुम कर्मों के फल के अधिकारी नहीं हो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी स्थिति के अनुसार निष्ठापूर्वक कर्म करे। विजय या पराजय तो भगवान के हाथ में है। वृत्रासुर ने इंद्र को यह कर कहकर प्रोत्साहित किया, मेरी विजय से तुम दुखी मत हो, युद्ध बंद करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय तुम अपना कर्तव्य करो। जब श्री कृष्ण चाहेंगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलापों के लिए यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है। न तो विजय पर हमें प्रसन्न होना चाहिए, न हार पर दुखी। हमें श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। हमें जीत अथवा हार की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा एकमात्र कर्तव्य है निष्ठापूर्वक कर्म करना, जिससे श्री कृष्ण हमारे कार्यों को मान्यता दे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। पीछे के भी श्लोक हैं। आज काल चक्र का एक सूचक तत्व उपस्थित हुआ है। काल को कई एक खंड में विभाजित किया गया है। एक खंड को वर्ष कहते हैं। आज से नए वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर भगवान राधा श्याम सुंदर से यही कामना है कि वह ऐसी कृपा करें कि हम लोगों का भक्ति, हम लोगों की भक्ति इस वर्ष में निरंतर बढ़ती रहे। हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। वृत्रासुर का प्रसंग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। श्रीमद् भागवतम का परिचय दिया गया है तो इस घटना का भी उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भागवतम के कई एक परिचय दिए गए हैं। गायत्री व्याख्या है और उसमें एक बात यह भी कहे हैं कि वृत्रासुर के उपाख्यान से युक्त है। और बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हम लोगों को आज कई एक श्लोक देखना है। तो हम सबसे पहले इन श्लोकों के अनुवाद को पढ़ देते हैं, इसके बाद थोड़ी व्याख्या की जाएगी। श्लोक नंबर 2। ततो युगांताग्नि कठोर जिह्व आविद्य शूलम तरसा सुरेन्द्र क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो हतोसि पापे तिरुषा जगात। तब असुरों में महान वीर वृत्रासुर ने कल्पांत प्रलय की धधकती अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को अत्यंत क्रोध एवं वेग से इंद्र पर चला दिया। उसने गरज कर कहा, अरे पापी, मैं तेरा वध किए देता हूं। ख आपतत्तद विचलत ग्रहोल कवत निरीक्ष दुष्प्रेक्ष मजात विक्लव वज्रेण वज्री शतपर्वणा छिनद भुजम तत्स्यो रग राज भोगम। आकाश में उड़ता हुआ वृत्रासुर का त्रिशूल प्रकाशमान उल्का के समान था, यद्यपि इस प्रज्वलित आयुध की ओर देख पाना कठिन था, किंतु राजा इंद्र ने निर्भीक होकर अपने वज्र से उसके खंड खंड कर दिए। उसी समय उसने वृत्रासुर की एक भुजा काट ली, जो सर्पों के समान वासुकी के शरीर के समान मोटी थी। छिन्नैक बाहु परिघेण वृत्त संदब्ध आसाध्य गृहीत वज्रम हनौ तताडेन्द्र मरा हनौ तताडेन्द्र मथा मरेभम वज्रम तहस्ता न्यपतन मघोन। शरीर के एक भुजा के कट जाने पर भी वृत्रासुर क्रोधपूर्वक राजा इंद्र के निकट पहुंचा और लोहे के बल्लम परिघ से उसकी ठोड़ी पर प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया। इससे इंद्र के हाथ से उसका वज्र गिर गया। वृत्रस्य कर्मा तिमहाद्भुतम तत् सुरासुराः चारण सिद्ध संघा अपूजयंस्तत् पुरहूत संकट निरीक्षहा हेते विचक्रसु भृशम। विभिन्न लोकों के वासी यथा देवता असुर चारण तथा सिद्ध वृत्रासुर के कार्यों की प्रशंसा करने लगे, किंतु जब उन्होंने देखा कि इंद्र महान संकट में है तो वे हाय हाय करके विलाप करने लगे। इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जित च्यूतम च्यूतम स्वहस्ताद अरिसन्निधौ पुनः तमाह वृत्रो हर आत वज्रो जहि सुशत्रो न विषाद काल। शत्रु के उपस्थिति में अपने हाथ से वज्र गिर जाने पर इंद्र एक प्रकार से पराजित हो गया था और अत्यंत लज्जित हुआ। उसने पुनः अपना आयुध उठाने का दुस्साहस नहीं किया, किंतु वृत्रासुर ने उसे यह कहते हुए प्रोत्साहित किया, अपना वज्र उठा लो और अपने शत्रु को मार दो, यह भाग्य को कोसने का अवसर नहीं है। युयुत्सताम कुत्र चिदात्तायिनाम जयः सदैकत्र नवै परात्मनाम विनयिक मुत्पत्ति लय स्थितिश्वरम सर्वज्ञ माध्यम पुरुषम सनातनम। वृत्रासुर ने कहा, हे इंद्र, आदि भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी को सदैव विजय होना निश्चित नहीं है। वे ही उत्पत्ति पालन तथा और प्रलय के कारण हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होने तथा भौतिक देहों का त्याग करने के लिए बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधीनस्थ कभी विजयी होते हैं तो कभी पराजित होते हैं। हम लोग वृत्रासुर के उक्ति को सुन रहे हैं। इस संसार में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, लेकिन युद्ध के भयानकता को बतलाने के लिए लोग शब्द प्रयोग करते हैं, देवासुर संग्राम, देवता और असुरों का संग्राम। और एक तरह से यह देवासुर संग्राम ही है, लेकिन सामान्य रूप से देवता और असुर का युद्ध होता है तो एक पक्ष से बलि महाराज लीडर होते हैं, एक तरफ से इंद्र लीडर होते हैं, लेकिन यह जो युद्ध है देवताओं के समक्ष वृत्रासुर खड़े हैं। वृत्रासुर के जन्म की कथा आप पहले से सुन चुके हैं, बहुत लोग आज एकदम नए नए हैं, और उनके लिए मैं अति संक्षेप में बतला देना चाहता हूं, जब इंद्र अपने पुरोहित विश्वरूप का वध कर दिए भय के मारे, और उनके पिताजी अत्यंत कुपित हुए त्वष्टा जी, उनको बड़ा क्रोध आया, और इंद्र के वध करने के संकल्प से वे यज्ञ कर रहे थे, और उसी यज्ञ कुंड से एक दैत्य का जन्म हुआ जिसको वृत कहते हैं। वो असुर स्वभाव का था, दैत्य था, इसीलिए उसको वृत्रासुर कहते हैं। जे भी वो यज्ञ कुंड से निकला तो बहुत भयानक दिख रहा था, उसका शरीर काला था, लिखा गया है कि जैसे सखुआ का वृक्ष जल जाता है काला दिखता है, वैसे दिख रहा था। कभी कभी देखा जाता है कि जंगल में आग लग जाती है, सखुआ बहुत मजबूत लकड़ी होता है, उसका सार नहीं जल पाता है, चमड़ा जल जाता है, तब तक आग बुझ जाती है, तो देखने में काला लगता है। तो यही उदाहरण दिया गया है, तो बहुत शक्तिशाली था, देखने में काला लग रहा था, और उसके मुख की आकृति बहुत भयानक थी, और सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसु मात्रम वो बाण के समान बढ़ रहा था, कुछ ही समय में वो पूरे पृथ्वी को ही घेर लिया, आवृत कर लिया, इसी से उसका नाम वृत हो गया। वृत आवृत एक अर्थ में है, वृत आवृत कवर, कवरिंग के अर्थ में आता है, जो पूरा पृथ्वी को कवर कर लिया, इसलिए उसका नाम वृत रख दिया गया। इतना तेजी से वो बढ़ रहा था कि उसको देख करके ही देवता लोग बहुत भयभीत हो गए, और भय के मारे जितना उनके पास आयु था, जितना हथियार था, सब एक साथ चला दिए, और वह व्यक्ति ऐसा है कि सारे देवताओं के सारे आयुध को अपने मुख में ही निगल गया। अब देवता लोग और भयभीत हुए। देवताओं की विशेषता है कि भगवान के शरण में रहते हैं, भगवान का आश्रय लिए, भगवान उनको उपाय बतलाए, और वे दधीचि ऋषि के पास गए, दधीचि ऋषि अपना हड्डी दिए, उससे वज्र का निर्माण हुआ। भगवान आदेश दिए हैं, ऋषियों के मंत्र से अभिषिक्त है, और वज्र जब इंद्र के हाथ में आया तो बहुत उत्साहित हुए, और हाथ में वज्र ले करके ऐरावत पर सवार हो करके और युद्ध के लिए चल दिए। जैसे इंद्र उत्साह में थे, वैसे ही अनेक देवता उनके सहयोगी लोग भी उत्साह में थे, और जा करके नर्मदा नदी के तट पर वे खड़े हुए, वृत्रासुर को चैलेंज दिए, और वृत्रासुर भी अपने सहयोगियों के साथ चैलेंज को स्वीकार किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब युद्ध प्रारंभ हुई तो दैत्य लोग बहुत बहुत हथियार चलाने लगे, इतना बाण मारे कि देवताओं की सेना ढक गई, और जब देवता लोग उनके हथियार को काटने लगे, वे खूब हथियार मार रहे थे, लेकिन देवता लोग सारे हथियार को अपने आयुध से काट दे रहे थे। अब हथियार से सफलता नहीं मिली तो असुरों के पास तो माया भी है, वे लोग माया का प्रयोग किए और चट्टान फेंकने लगे और कई एक प्रकार से वे युद्ध करते रहे, लेकिन कितना भी वे प्रयास किए उनका प्रयास सब निष्फल गया। उदाहरण दिया गया है कि जो भक्त हैं तो उन पर कोई साप देता है या गाली देता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। कृष्णानुकूलेषु कृतः प्रयास, क्योंकि जो भक्त हैं भगवान पर आश्रित हैं और कोई क्षुद्र वचन बोलता है तो उसका उन पर कोई असर नहीं होता, या साप भी देता है तो उसका असर नहीं होता। और ऐसे दैत्य लोग अपना पूरा प्रयास किए लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। खास करके इंद्र इतने उत्साह में थे कि सबको सबके प्रयास को विफल कर रहे थे। अब देवता लोग खूब उनकी पिटाई करने लगे, पिटाई करने लगे तो इसको अब देह करके वृत्रासुर के जो अनुयायी हैं तो वे भागने लगे। यद्यपि वृत्रासुर वो बहुत ही बड़े वीर हैं, अब उस आदमी के उस दैत्य की विशेषता देखिए कि अकेले ही युद्ध में खड़ा था और इस युद्ध के कई एक ढंग से बहुत महिमा है। पहली बात तो यह है कि वृत्रासुर के वीरता पर आप देख सकते हैं, उसके शक्ति पर विचार कर सकते हैं कि जिस वज्र से इंद्र पर्वत के पंख को काट दिए, पर्वत को चूर्ण चूर्ण कर दिए, धूर धूर कर दिए, और उस वज्र का प्रयोग वे किए इंद्र के गर्दन काटने के लिए, तो एक साल तक वो आरा मशीन तक चलता रहा। जो वज्र पर्वत को धूर धूर कर सकता है एक बार चलाने से, वही वज्र एक साल तक चलता रहा। तो आप एक शक्ति का अनुमान कर सकते हैं, उनके शरीर के सार को आप देख सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और युद्ध के भूमि में वृत्रासुर की जो उक्ति है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी उक्तियों में से एक दो उक्ति पर हम लोग विचार करेंगे। तो मैं कह रहा था कि जब युद्ध हो रहा था तो असुर लोग सब भागने लगे, लेकिन वृत्रासुर के साहस में कोई कमी नहीं आई। पहले तो असुरों को संबोधित किया कि अरे कहां तुम लोग भाग रहे हो, अरे तुम लोग अपने माँ के पुत्र हो कि मूत्र हो। अरे जो अपने माँ का पुत्र होता है तो ऐसे मृत्यु से विरत नहीं होता है। और सिद्धांत दे रहे हैं कि अरे इस संसार में दो प्रकार के मृत्यु दुर्लभ है, और उसी की शास्त्र प्रशंसा करते हैं। वे कह रहे हैं कि एक तो युद्ध में सामने खड़े खड़े लड़ते हुए अपने शरीर का त्याग कर देना, ये बहुत भारी यशस्वी मृत्यु है, और नहीं तो भगवान में मन लगा करके धारण किया जाए, भगवान में मन लगा करके देह का त्याग किया जाए। तो एक तरह से असुरों को उत्साहित कर रहे हैं वृत्रासुर कि तुम लोग तो भगवान में मन नहीं लगा पाओगे, तो मृत्यु के लिए बहुत सुंदर अवसर है, तुम लोग भय मत करो, इस अवसर का लाभ लो। लेकिन वे इतने भयभीत थे कि कालोपपन्नम, यद्यपि काल के अनुरूप बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, लेकिन असुर लोग उस बात को ग्रहण नहीं किए। भय के मारे जान मचाने के लिए भाग गए, तो सारे उनके सहयोगी भाग गए, लेकिन वृत्रासुर के साहस में कोई कमी नहीं हुई। वे अकेले ही देवताओं के सेना को कुचलने लगे, ममर्द एकदम कुचल दिए। वो इतने जोर से आवाज किए कि देवता पक्ष के जो सैनिक थे मूर्छित होकर के गिर गए, और वे रौंद रहे थे सेना को, ऐसे रौंद रहे थे अपने सेना की स्थिति को देख करके इंद्र को बहुत क्रोध आया, और वे वृत्रासुर की ओर लपके। उधर जब वृत्रासुर की तरफ चले तो वृत्रासुर भी इंद्र पर प्रहार करना चाहे, और इंद्र पर प्रहार किए, वो इंद्र इतने कुशल हैं कि उनके आयुध को भी काट दिए और उनके बांह को भी काट दिए। वो एक बांह कट गया है, उससे खून बह रहा था जैसे पर्वत से कोई जलप्रपात होता है वैसे खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वृत्रासुर के उत्साह में कोई कमी नहीं हुई। वे फिर दूसरे हाथ से एक भल्ला लेकर के और इंद्र पर चलाए, और इंद्र पर भी चला रहे थे, वो इंद्र का तो वज्र ही उनके हाथ से गिर गया। पहले तो वे गदा मारे थे, पहले गदा जोर से चलाए तो गदा को वृत्रासुर अपने एक हाथ से पकड़ लिए और घुमा करके उसको फिर ऐरावत पर मारे, पकड़ करके ऐरावत पर मारे, और ऐरावत को पर जब गदा का प्रहार किए तो ऐरावत का मस्तक फट गया और उससे खून निकलने लगा, और उसको इतना कष्ट हुआ कि सप्त धनु 28 हाथ वो पीछे चला गया। और इंद्र पर भी प्रहार किए, और जब ऐसे किए तो उनके भल्ला से इंद्र के हाथ में जो वज्र था वो गिर गया, और जब वज्र गिर गया तो इंद्र तो एकदम ठिठक गए, बहुत लज्जा महसूस कर रहे थे, लेकिन वृत्रासुर अब उनको उत्साहित कर रहे हैं कि अरे युद्ध करो युद्ध करो, तुम खड़ा क्यों हो गए। इंद्र तो बहुत निरुत्साहित हो गए कि गदा जैसे निष्फल हो गई वैसे ही वज्र निष्फल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो युद्ध से विरत थे, उनके मन में भय था कि हमारी पराजय हो सकती है, लेकिन वृत्रासुर उनको भी ललकारने लगे कि विषाद का समय नहीं है, और वे सिद्धांत देने लगे कि तुम भय मत करो, विजय तुम्हारे साथ है, विजय तुम्हारी है। और वे सिद्धांत दे रहे हैं कि ये जो हमारे भगवान हैं हमारे पति हैं तो हमको विजय नहीं देंगे। इंद्र के मन में भय था कि भाई ये भी भक्त है, हो सकता है कि भगवान इसका साथ दे, तो वे कह रहे हैं कि ना, भगवान का ऐसा स्वभाव है कि वे अपने भक्तों पर विजय नहीं देते हैं, वे संपदा नहीं देते हैं। वे कह रहे हैं कि पुंसाम किलय कांत धियाम स्वकानम या संपदो देवी भूमौ रसायाम न रात यद्वेष उद्वेग आधिर मदह कलिर व्यसनम संप्रयास। अरे कि जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं तो उनको संपदा नहीं देते, पृथ्वी का संपदा नहीं देते हैं, स्वर्ग की संपदा नहीं देते हैं, रसातल की संपदा नहीं देते हैं, अरे भाई अपने भक्तों को क्यों संपदा नहीं देते हैं? तो कह रहे हैं कि भगवान जानते हैं कि उससे उनके मन की चिंता बढ़ती है, लोग द्वेष करने लगते हैं, कलह होने लगती है, और उसके रक्षा के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, और इसलिए वे अपने भक्तों को, एकांतिक भक्तों को सफलता नहीं देते। अरे सफलता देने की बात तो दूर है, वे कुछ सफलता के लिए प्रयास करते उस पर भी आघात कर देते हैं, और इसी से भगवान के कृपा का अनुमान किया जाता है। लेकिन एक चीज है कि जो एकांतिक भक्त हैं उन्हीं के साथ है, फिर भी इंद्र ऐसे चुपचाप थे, कुछ प्रयास नहीं कर रहे थे युद्ध के लिए, और फिर वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करने लगे। लेकिन फिर भी देखे कि इंद्र युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो कह रहे सुखदेव गोस्वामी कि एवं जिहासु नृपदे हम आ जाओ मृत्युम वरम विजयान मन्यमान सूलम प्रगृहिया व्यपतत सुरेंद्रम यथा महापुरुषम कैट भोक्सु। जब उत्साहित करने से, वचन से भी इंद्र युद्ध के लिए प्रेरित नहीं हुए, तो वृत्रासुर अपने हाथ में सूल ले करके और इंद्र को ललकार, इंद्र पर दौड़े। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे प्रलय काल में कैटभ है नाम का दैत्य भगवान पर सूल लेकर के दौड़ा था, वैसे वृत्रासुर इंद्र पर दौड़े। तो उदाहरण से स्पष्ट है कि इंद्र का पराजय नहीं होगा। जैसे कैटभ दैत्य भगवान पर दौड़ा लेकिन मारा तो वो गया, तो इसी तरह संकेत दे रहे हैं कि यद्यपि इंद्र पर दौड़ रहे हैं सूल लेकर के वृत्रासुर, लेकिन वध तो इनका होगा। भाई क्यों इनका क्यों दौड़ रहे हैं युद्ध में? कहें कि जिहासु अपने शरीर का त्याग करना चाहते हैं। भाई अपने से अपने शरीर का कोई क्यों युद्ध में त्याग करेगा, नाश करेंगे? कहने के विजयन मन्यमान, वे कह रहे हैं कि मृत्यु का विजय से वे श्रेष्ठ मान रहे थे, और जब ऐसे वे सूल लेकर के दौड़े, वो सूल का वर्णन कर रहे हैं कि वैसे चमक रहा था, वैसे उसे आग निकल रहे थे, मानो वह प्रलय कालीन अग्नि की लपट हो, और आक्षेप करने लगे इंद्र पर और जोर से बोले हतो से पापे तिरुसा जगा द, जोर से वो गर्जना करके कहे कि अब तुम मरा। जब वो त्रिशूल उस पर भल्ला फेंक रहे थे, वो इंद्र भी अब उसके लिए तैयार हुए और ख आपतत वज्रेण वज्री सतपर्वणा छिनत, और वे अपने वज्र से इंद्र का आयुध, वृत्रासुर का आयुध भी मार दिए और उसका हाथ भी काट लिए। छिन्नई क बाहु पर घृण वृत्त संरब्ध आसद्य गृहित वज्रम, और फिर वे एक भल्ला लिए, परिघ लिए और इंद्र पर प्रहार करने के लिए चले, और इंद्र पर प्रहार किए तो इंद्र के हाथ से वज्र गिर गई। अब शत्रु के समक्ष अपने वज्र को भी नहीं संभाल पाए, तो इंद्र बहुत विषाद में पड़े, और अब इतना लज्जा महसूस कर रहे थे कि इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जित च्युतम स्वहस्ता दर्शन निधौ पुनः, अपने शत्रु के समक्ष अपने आयुध को भी नहीं संभाल पाए तो बहुत लज्जा महसूस कर रहे थे। अब तो वृत्रासुर देख रहे हैं कि तो रुक गया। तमाह वृत्तो हर आत चक्रो जही से शत्रुम्न विषाद काल, अब इंद्र को उत्साहित कर रहे हैं, कह रहे विषाद करने का समय नहीं है, फिर से वज्र को उठाओ और तुम युद्ध करो, तुम हमारा वध करो, हम पर प्रहार करो। अब इंद्र के मन में विचार आ रहा है, एक तो लज्जा महसूस कर रहे हैं, फिर मन में विचार आ रहा है कि कहीं गदा के समान वज्र भी निष्फल हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, हमारी पराजय हो जाएगी। तो वृत्रासुर उत्साहित कर रहे हैं कि युद्ध सताम कुत्रचिद आतताई नाम जय सदय कत्र नवय परात्मना। वे कह रहे हैं कि अरे जो युद्ध के इच्छुक हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो उनको जय पराजय पर विचार नहीं करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति का हमेशा विजय होगा, क्योंकि परात्मना कोई भी जीव है तो वो स्वतंत्र नहीं है, काल के अधीन है, भगवान के अधीन है, अपने कर्म के अधीन है। और इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सदा उसका ही विजय होगा। तो युद्ध करने वाले जय और पराजय पर विचार नहीं करते हैं, उनका तो कर्तव्य है युद्ध करना, उनको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि विजय तो केवल एक व्यक्ति का होता है। विनय कम उत्पत्ति लय लय स्थितिश्वरम, हमेशा विजय केवल भगवान का होता है, भगवान का कभी पराजय नहीं हो सकता, क्योंकि वे अकेले ही सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और सबका नाश करते हैं, वे सर्वज्ञ हैं, सबके मूल हैं, सबके भोक्ता हैं और सनातन हैं, और इसलिए उनका कभी पराजय नहीं होता। और एक भगवान के अतिरिक्त ऐसा और कोई व्यक्ति नहीं है जिसका सदा विजय ही हुआ, कभी विजय होता है कभी पराजय होता है, इसलिए व्यक्ति को इस पर विचार नहीं करना चाहिए। तुम युद्ध के लिए उपस्थित हो तो अपना कर्तव्य करो, युद्ध करो। तो यद्यपि इंद्र को प्रोत्साहित करने के लिए वृत्रासुर ये बात बोल रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये संसार की ऐसी स्थिति है कि एक रस नहीं रहता है, कभी सफलता मिलती है कभी विफलता मिलती है, लेकिन व्यक्ति का कर्तव्य है कि इससे शोक और हर्ष में प्रभावित न हो। श्रील प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं कि साधारण कर्म की बात तो दूर है, यहाँ तक प्रचार कार्य में भी व्यक्ति को सफलता विफलता पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, गुरु गौरांग की आज्ञा है, तो आज्ञा का पालन करना चाहिए। सफलता मिले न मिले यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो यहाँ वृत्रासुर जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे लोग हैं कि इस बात को अपने मस्तिष्क में रखते हैं। जैसे एक बार की घटना है कि देवता और असुर में संग्राम चल रहा था, और असुरों के लीडर बलि महाराज थे, उनके बहुत पिटाई हुई, बहुत पिटाई हुई, लेकिन फिर भी उनको शोक नहीं हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पराजितोपनाखिद्यत, पराजित होने पर भी शोक नहीं किए। क्यों? लोक तत्व विचक्षण, क्योंकि वो संसार की स्थिति को जानते हैं। तो बहुत भारी संबल मिलता है जीवन में, हम लोगों के भी जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन एक भक्त का यही कर्तव्य है कि उसे प्रभावित न हो, क्योंकि भक्त जानता है परात्मना जो किसी के अधीन है। संग्रामे वर्तमाना नाम काल चोदित कर्म नाम कीर्तिर जयो जयो मृत्यु सर्वे श्याम शिवरनुक्रमा तदिदम काल रसनम जना पश्यन्ति सूरय न हिष्यन्ति न सोचन्ति तत्र जूयम अपंडिता। बलि महाराज के उक्ति है कि जो संग्राम में स्थित है काल चोदित कर्मणा, अब वे तो काल के अधीन है, तो कभी जस मिलेगा विजय मिलेगा तो कभी अपजस और मृत्यु की भी प्राप्ति होगी। तो तदिदम काल रसनम जना पश्यंत सूरय, जो बुद्धिमान है विद्वान है तो जानते हैं कि काल रसनम ये संसार काल के अधीन है, इसलिए वे समभाव से अपना कर्तव्य करते हैं। तो यहाँ वृत्रासुर इंद्र को उत्साहित कर रहे हैं कि आप निराश मत होइए, गदा के समान वज्र निष्फल नहीं जाएगा, आप युद्ध कीजिए। और कदाचित आपके मन में संशय भी है तो इससे अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार का स्वभाव ही है कि कभी जय मिलता है कभी विजय मिलता है, ओ कभी जय मिलता है कभी पराजय मिलता है, तो इसकी चिंता मत कीजिए। आप यह मत समझिए कि हमेशा विजय ही मिलेगा, और आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। और इसी सिद्धांत की पुष्टि आगे के श्लोकों में किए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान के हाथ में जय पराजय है, काल के हाथ में है, और व्यक्ति का तो कर्म में ही अधिकार है। तो इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए वृत्रासुर इंद्र को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हरे कृष्णा।